आने वाले इस सप्ताह 3-4 दिनों में श्री जगन्नाथपुरी में ये बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य उत्सव श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जा रहा है। इस प्रसंग में एक तत्व जो श्री देवामृत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, पिछले बार जब हम जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। वो कह रहे थे कि ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है सदियों से चली आ रही है। जय शिष्यनिथाय गौरचंद्र की जय। श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो ये जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव सदियों से चली आ रही है और लाखों लोग आज भी, हालांकि कलयुग में धर्म में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा कम होती जा रही है, पर फिर भी हम देखते हैं लाखों लाखों लोग इस उत्सव के लिए जगन्नाथपुरी में एकत्रित होते हैं। पर शायद बहुत ही कम लोग इस उत्सव की जो महत्व है, जो अंदरूनी शिक्षा को जान पाते हैं। देवामृत स्वामी महाराज शारीरिक रूप से थोड़ा बीमार होने के कारण रथ यात्रा में भाग नहीं ले पाए और इसीलिए थोड़े समय खड़े थे। उसके बाद वो जिस होटल में ठहरे थे वहां चले गए। उनके कमरे में एक टीवी था और वहां भी जगन्नाथपुरी का ये रथ यात्रा का कमेंट्री चल रहा था, तो उन्होंने उसको ऑन किया और वो सुन रहे थे ये जो कमेंट्री कमेंटेटर वो है जगन्नाथपुरी के ही, और वो बता रहे थे कि किस तरह से अलग अलग लोग इस उत्सव में अलग अलग कारण भाग लेते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। बोले जो शैवाइट हैं उनके लिए बलराम जी, जो शाक्त लोग हैं उनके लिए सुभद्रा, और जो वैष्णव हैं उनके लिए जगन्नाथ। आप उनको ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, जो भी मान सकते हो। इस तरह से जो सुन रहे थे टीवी में जो कमेंट्री पूरे भारत भर में जिसका प्रसार हो रहा था, तो देवामृत स्वामी महाराज सोच रहे थे कि मैं जिस रथयात्रा का दर्शन करने आया हूं क्या ये वो ही रथयात्रा है या कुछ और है। और तब वो बोल रहे थे कि हमारा अहोभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, खास करके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद, इस परंपरागत जो हमें दृष्टि प्रदान किए हैं, कि ये रथ यात्रा है क्या, ये हैं कौन, ये स्वरूप इनका ऐसा क्यों है, ये उत्सव का अंदरूनी लीला क्या है, सर्वोच्च भगवान के लीलाओं का सर्वोच्च पराकाष्ठा, परम कृष्ण प्रेम का परम जो प्रदर्शन, ये कौन जान पाएगा ये आचार्यों की कृपा के बिना। कौन जान पाएगा कि ये जो लीला है भगवान श्री कृष्ण जब द्वारकावासियों के साथ कुरुक्षेत्र गए थे, वहां ब्रजवासी लोग भी आए थे, राधा रानी सारी गोपियों लोग भी आए थे, और तब परम विरह भाव में सुंदर रथ बनाकर श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को श्रीमती राधा रानी ने बड़े प्रेम से अपने हृदय में स्वागत किया और रथ बनाकर उन्हें वृंदावन ले जाने की ये जो लीला है, ये यहां फिर से हर साल ये चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, ये लीला को प्रदर्शित किए। खुद भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में आकर इस लीला को सुंदर से प्रदर्शित किए। ये दिखाने के लिए कि जगन्नाथ जी केवल वृंदावन जा रहे हैं, अभी द्वारका से जो जगन्नाथ मंदिर है द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है, और गुंडीचा मंदिर जहां जगन्नाथ रथ यात्रा जाती है दिनों के लिए, वो वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिखाने के लिए कि राधा रानी के बिना जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ेंगे, यही उनकी प्रेरणा है आगे बढ़ने की। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते थे तो जगन्नाथ जी जाते ही नहीं थे आगे, केवल जब चैतन्य महाप्रभु सामने आके कीर्तन करते थे तो रथ निकलता था। और ये भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शन किया कि ये लोगों की खींचने की शक्ति से जगन्नाथ जी नहीं जा रहे हैं, ये भ्रम है, सिर्फ जगन्नाथ जी की इच्छा से वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी उन्होंने प्रदर्शन किया। जब एक समय रथ रुक गया, राजा ने हाथियों को लगाया, बड़े बड़े मल्लों को लगाया, पर रथ हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। पर जब चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे जाकर अपने सर से रथ को केवल स्पर्श किए, और वैष्णवों के हाथों में, कुछ वैष्णवों के हाथों में रस्सी दे दिया, वैष्णव हट्टे कट्टे पहलवान तो नहीं होते, हम देखते हैं कभी, हम भी नमूने, इतना बड़ा रथ, विशाल रथ, पर धड़धड़ एकदम भागने लगा रथ अपने आप, जैसे ही महाप्रभु ने स्पर्श किया उसे। तो इस तरह से महाप्रभु ने साफ साफ दिखाया ये रथ यात्रा क्या है, और ये हमारा अहोभाग्य है कि गुरु परंपरा में ये हमें उपलब्ध हुआ है। कितने उत्साह के साथ भगवान को अपने हृदय के मंदिर में स्वागत करना चाहिए। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, मम मन मंदिरे रहो निशिदिन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। तो किस तरह से, कितने उत्साह के साथ, कितने प्रसन्नता के साथ चैतन्य महाप्रभु साथ साथ जो भक्तों का झुंड बनाते थे, सात ग्रुप होते थे उनके, दो सामने, दो बगल में, एक एकदम आगे और एक पीछे, इस तरह से उनका झुंड, तीन ऐसे सामने, दो बगल में, रथ के बगल में और पीछे एक, और हर एक में दो दो मृदंग, ऐसे 14 मृदंग होते थे, करताल लोगों का कीर्तन होता था, और अलग अलग जो जगह से आए थे लोग महाप्रभु के अनुयायी, उनका एक एक, और हर एक कीर्तन पार्टी में एक एक कीर्तनिया, एक नृत्य करने वाले और गायक, इतने सुंदर से। और जब महाराज प्रताप रुद्र ने इसका दर्शन किया, दंग रह गए, वो आश्चर्यचकित रह गए, बोले ऐसा कीर्तन मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले भक्तों को मैंने कभी नहीं देखा। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा हां, क्योंकि ये जो है ये मामूली कीर्तन नहीं है, ये प्रेम संकीर्तन है, मामूली संकीर्तन नहीं है, ये महाप्रभु के अनुयायी है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायत। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व भर में, पूरे साल भर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ जगन्नाथ रथ यात्रा होते ही रहता है। आज कई जगह केवल आज ही के दिन भी मनाते हैं, और कई जगह अलग अलग दिनों में। परम पूज्य लोकनाथ महाराज एक बार एक प्रवचन में कह रहे थे, बोले जगन्नाथपुरी में ऐसी प्रथा है, लोगों का ऐसा सोच है कि क्यों दूसरों को, फॉरेनर लोगों को अंदर नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने सुना है कि इनके पीछे जगन्नाथ जी चले जाएंगे, खास करके रशिया वाले, इसीलिए इनको नहीं छोड़ते, वो अंदर जाएंगे तो जगन्नाथ जी इनके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो महाराज जी बता रहे थे ये तो हो गया है विश्व भर में सब जगह। मैं मॉस्को गया था, मॉस्को में लेनिन का बड़ा पुतला है, उसके चारों ओर जगन्नाथ जी जाते हैं, सबसे बड़ा परम नास्तिक वो देखते रहता है जगन्नाथ जी को, कम से कम ये उसका सुकृति है कि उसको पुतले को कम से कम जगन्नाथ जी का दर्शन मिला, शायद लेनिन स्क्वायर में जहां अभी भी सोया हुआ है उसका शरीर, थोड़ा कहीं तो सुकृति मिलेगा उसको। और वहां इतना, कितने लोग कीर्तन में भाग लेते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये तो सिर्फ एक शहर हुआ। इस तरह से अमेरिका में जो प्रभुपाद के समय ही, उस समय सबसे प्रसिद्ध था पूरे विश्व में अमेरिका, और अमेरिका में न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में सबसे प्रमुख जो रास्ता है फिफ्थ एवेन्यू, प्रभुपाद के जीते जी उस फिफ्थ एवेन्यू में रथ यात्रा हुआ, सबसे बिजी रास्ता, 5 मिनट के लिए वहां रुक नहीं सकते, रुक गए तो फिर बड़ा हलचल मच जाता है, 5 मिनट भी रुक नहीं सकते वहां, पूरा रास्ते को बंद कर दिया गया रथ यात्रा के लिए। प्रायश विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्थान उस समय। इतना ही नहीं, पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया वहां, इतना उमंग, इतना उत्साह, उल्लास, देखने बहुत आनंद आता है। और वहां तो अलग अलग तरह सजाते, बलून लगा के, ये लगा के खूब कीर्तन चलता है। 3-4 जगह जब मैं गया हूं, लंदन में गया और मॉस्को में देखा और वीडियो देखा काफी है, पूरे विश्व के महत्वपूर्ण शहरों में प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ जी, और खास करके कलयुग ये सबसे महत्वपूर्ण है, हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते, बहुत बीमार है तो डॉक्टर को आना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ जी सब सड़कों में जाकर सबको दर्शन दे रहे हैं, और उनका कृपा कटाक्ष जो है कोई बच नहीं सकता, इतनी बड़ी आंखें उनकी, कोई छत के ऊपर भी खड़ा रहेगा तो दर्शन हो ही जाता है। पहले से ही हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, जब बच्चे थे तब से उनको जगन्नाथ रथ यात्रा में इतना उत्साह था, छोटी उम्र में बचपन में बच्चों को लेकर इतने उत्साह के साथ कई दिनों तक रथ यात्रा मनाते थे, उत्सव को रखते थे, और सब पूरे आसपास के जो बड़े लोग हैं वो लोग भी उसमें भाग लेते थे इनका उत्साह देखकर बच्चों का, और प्रभुपाद जी के नेतृत्व में चलता था उस समय अभय चरण, छोटा अभय। और कभी कभी वो जगन्नाथ वो रेलवे स्टेशन में जाके देखते थे कलकत्ता में जगन्नाथपुरी का टाइम टेबल, कब जगन्नाथपुरी के लिए गाड़ी निकलता है। तो ये और वही चीज प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से उन्होंने पूरे विश्व भर में यह रथ यात्रा शुरू करा दिया, और आज सैकड़ों नहीं हजारों, लिटरली हजारों हजारों लोग पूरे विश्व भर में, कैसे कैसे देश में, मिडिल ईस्ट में, वहां भी होता है, बड़े हॉल में छोटा सा एक ये लेके उसमें घूमते कि हाँ पब्लिक वहां उतना छोड़ते नहीं है, अनुमति नहीं देते, तो कम से कम वहां पर होता है। कैसे कैसे जगह में जगन्नाथ जी गए हैं हम सोच नहीं सकते। सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले शुरू किया, उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, एक बार हम जगन्नाथपुरी गए थे, गुंडीचा मंदिर के बगल में गौड़िया मठ है, और वहां परम पूज्य भक्ति वैभवपुरी महाराज प्रभुपाद जी के गुरु भाई, जो पिछले 2 साल पहले वो अपना शरीर त्याग दिए, वो कह रहे थे कौन सा ऐसा अवतार है जिसने हाथ में झाड़ू लिया है। गुंडीचा महार्जन के बारे में बता रहे थे रथयात्रा से पहले, ये प्रथा, ये भी चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। रथयात्रा से पहले जब जहां जगन्नाथ जी आने वाले हैं, एक दिन पहले झाड़ू लेकर बोले कौन सा ऐसा अवतार है, उनके आंखों में लगातार आंसू बह रहा था, बोले कौन सा ऐसा अवतार है जिसने अपने हाथों में झाड़ू लिया, झाड़ू लेकर साफ किया। कोई अवतार सुने आप चैतन्य महाप्रभु के अलावा, और कौन से ऐसे अवतार हैं जिन्होंने हाथ में झाड़ू लिया, तलवार लिया देखते हैं, सुदर्शन चक्र लिया देख रहे हैं, हाथ में झाड़ू लेकर। जैसा प्रभुपाद कहते हैं, कभी कभी शिक्षक एक छात्र विद्यार्थी के रूप में आकर दिखाते हैं हमको किस तरह से अ आ ई लिखना है। इस तरह से भगवान एक भक्त के रूप में आकर दिखाया कि किस तरह से भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं ये गुंडीचा मार्जन लीला, संक्षिप्त रूप में अगर बोला जाए तो, एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्रा और तुलसी, जो उस मंदिर के सुपरिंटेंडेंट थे, सेवा इंचार्ज बोलो, उनको बुलाया और उनसे अनुमति मांगी कि कृपया हमें गुंडीचा मंदिर साफ करने की आप अनुमति दे। तो काशी मिश्रा ने कहा और उस मंदिर के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि ये सेवा आप क्यों करना चाहते हैं, हम कर लेंगे ना, आप सिर्फ आज्ञा दो हम करेंगे। महाराज प्रताप रुद्र ने हमें आज्ञा दिया है कि जो भी बोले उसको तुरंत कर दिया जाए, पर अगर आप खुद करना चाहते हो तो ठीक है, हम ये आपकी लीला समझकर उसकी मदद करेंगे। तो 100 झाड़ू और 100 बड़े बड़े मटके पानी में, पानी के लिए वो दिया गया। और चैतन्य महाप्रभु अगले दिन अपने सारे भक्तों को लेकर निकल पड़े गुंडीचा मंदिर की ओर। ये लीला से बहुत महत्वपूर्ण सीख सीखने को मिलता है, जो महाप्रभु एक भक्त के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं किस तरह से हमारे हृदय को शुद्ध किया जाए, ताकि हम भगवान को, जो हमारे हृदय में करोड़ों साल से निवास कर रहे हैं हमेशा के लिए, पर हम उन्हें दर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उस जगह को स्वच्छ नहीं किया है, तब भगवान वहां पधारेंगे। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? तो जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, जो भी भक्त आए गुंडीचा मार्दिन में सहायता के लिए महाप्रभु के साथ, सब भक्तों को वैयक्तिक रूप से महाप्रभु ने चंदन लगाया, पहले चंदन लेप किया उनके शरीर पर और तब उनके हाथ में एक एक झाड़ू दिए। ये सूचित करते हुए कि ये जो सेवा है बाहरी रूप से बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही तुच्छ सेवा लगे, पर ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमें। कभी कभी हम सब सेवा करने के उत्सुक हैं, पर भौतिक बुद्धि होने के कारण सेवा में भी हम भेद करते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है, हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखने के कारण उस सेवा को भी हम ऐसा देखते हैं कि जो सेवा में थोड़ा डायरेक्टली भगवान के समीप सेवा मिले, क्या सौभाग्य है तेरा, मुझे नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है। और वहीं कहीं कोई कहीं पीछे कुछ कर रहा है तो बोले क्या सेवा हो गया, दूसरा सेवा। महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में दुखी को सुखी नाम से संबोधित करके उसके हृदय में जब प्रेम भरा, ये केवल लीला सुनने के लिए नहीं है। कभी कभी हम सुनते अच्छा लगता है, पर वापस आने के बाद बोलते हैं वो दुखी को सुखी बनाए, ठीक है हम सुखी से दुखी हो जाएंगे अगर आप वो सेवा दोगे। स्वाभाविक रूप से ऐसा धारणा है हर एक में, या जहां कम से कम दिखे लोगों को तो कुछ तो अच्छा लगता है, सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सबको दिखना चाहिए मैं सेवा कर रहा हूं। पर यहां महाप्रभु इन सबको चंदन लेप कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हमारा अहो भाग्य है, गुरु पूजा में गुरु अष्टक में हम गाते हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तंश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। युक्तस्य, खुद अपने लगते हैं गुरु, च नियुंजतोपि, और दूसरों को भी लगाते हैं। तो एक आचार्य के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले झाड़ू हाथ में लिए, दिखाने के लिए कि कितना हो भाग्य है हमारा कि भगवान के डायरेक्ट सेवा में हमें कुछ मिला है, भले वो बाहरी रूप से तुच्छ झाड़ू मारने का हो या सामने खड़े होकर चामर डुलाने का या अभिषेक करने का। द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस, परम सत्य से जुड़ा जो है कोई भी कार्य जो है, कोई तुच्छ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। तो चंदन लगाए और सबके हाथ में एक एक झाड़ू दिए और सब प्रवेश किए। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु सब शुरू किए। बहुत बड़ा मंदिर, आप में से कितने लोगों ने गुंडीचा मंदिर देखा है, हाथ उठाइए। शायद जगन्नाथ रथ यात्रा, आई मीन जगन्नाथपुरी जाना है और एक यात्रा निकालना है यहां से काफी लोगों के लिए। शायद जो हाथ नहीं उठा रहे वो लोग सब उधर है। बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, दर्शन का मंदिर है, फिर भोग मंदिर है, फिर किचन है, बड़ा कॉम्पाउंड है, बगीचा है इस तरफ, बहुत ही विशाल मंदिर है। और महाप्रभु पहले मंदिर में गए डायरेक्टली जहां भगवान को रखते हैं और वहां साफ किए, फिर बहुत विस्तृत रूप में पूरा एक अध्याय इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विस्तृत किया है इस अध्याय में। तो इस तरह से पूरा साफ किया और उन्होंने एक प्रकार का कंपटीशन लगाया और कहे कि देखता हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन कितना सेवा करता है, किसका ढेर सबसे बड़ा होता है, धूल निकालने में किसका ढेर सबसे बड़ा होता है। और चैतन्य महाप्रभु इतने उत्साह के साथ साफ कर रहे थे, उनका जो धूल का ढेर आया वो सारे भक्तों का ढेर अगर जोड़ा जाए एक जगह, वो और उसके सामने महाप्रभु का बड़ा था। ऐसे साफ कर रहे थे मानो उनके 100 हाथ हो, इतने उत्साह के साथ, इतने उत्साह के साथ ये प्रदर्शित करते हुए कि अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, जैसे रूप गोस्वामी कहते उत्साहात निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम समय बहुत कम है, करना बहुत ज्यादा है, हृदय में करोड़ों जन्मों के पाप भरे हुए हैं, तो उत्साह के साथ हमें साफ करना है हमारे हृदय के मंदिर को भी सेवा के द्वारा। फिर एक बार झाड़ू मार दिए, बड़ी बड़ी गंदगी निकल गई, उसके बाद फिर और एक बार जो छोटे छोटे क्रैक में होता उसको भी निकाले और थोड़ा, और उसके बाद 100 लोग बड़े मटके में पानी लेकर खड़े हुए थे। और पहले झाड़ू किया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जमीन पे जहां चलते हैं, दीवार पे, छत पे, वो सिंहासन निकालकर उसको साफ किए फिर रखे, अपने ही जो वस्त्र पहने हुए थे उसी में धूल लिया और बाहर फेंका, उनको देखकर सब भक्त लोग वही करने लगे। इस तरह से कई बार 3 या 4 बार लगातार साफ किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये प्रदर्शित करते हुए कि पहले पहले स्थूल रूप से कुछ अनर्थ निकलती है हमारे हृदय से, पर बाद में बहुत सारे सूक्ष्म चीजें भी हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। कभी कभी हम कुछ नियम पालन करने लगते हैं, माला जप करते हैं, कंठी माला तिलक पहनते हैं, तो लोग सम्मान देते हैं, कोई महाराज भक्त है ये है, पर उससे भी आसक्त हो जा सकते हैं और उसमें भी हमारी भक्ति हम ढीले पड़ सकते हैं। तो सूक्ष्म तरीके से भी बहुत सारे अनर्थ हैं, किस तरह से उसको निकालना है ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित किया। और दृढ़ता के साथ इस अनर्थ निवृत्ति करना है, पहाड़ जैसे है, इतनी आसान। कभी कभी बड़े पहाड़ देखकर हम डर जाते, बोले कौन चढ़ेगा, किसी को जाने का भी उम्र हो गया हमारा भी, पर दृढ़ता होनी चाहिए। और इस बड़ी दृढ़ता के साथ बार बार करके पूरा एकदम चमका दिए उस मंदिर को। फिर और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग वहां आता है, मंदिर में प्रवेश करके पूर्ण साफ होने तक कोई भक्त दूसरा कोई बातचीत नहीं कर रहा था, केवल एक ही, कुछ ही को कुछ कहना है, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, बस ये कहता था, कृष्ण कृष्ण, मटका देना है तो हरि कृष्ण कृष्ण, तो ये लेता था कृष्ण कृष्ण और कुछ नहीं। कभी कभी बड़ा बड़ा लंबा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, ऐसा करो, ये मत करो, वो मत करो, कैसे लोगों को समझ में आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। कृष्ण कृष्ण मतलब समझ लो, पूरा साफ करो इसको, कृष्ण कृष्ण हो गया केवल, और सबको समझ में आ रहा था क्या दूसरा बोल रहे हैं। इसमें एक चीज, जब हरेक का उद्देश्य एक ही होता है कि हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, वैष्णवों को प्रसन्न करना चाहते हैं, फिर बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे चीजें छोटे छोटे चीज समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाता है। जब कृष्ण केंद्र नहीं है, हमारा उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, तो फिर बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं, सबको समझाना पड़ता है, ये मत करो, वो करो, ये करो, वो करो। पर अगर आपस में प्रेम है, उद्देश्य एक ही है, तो फिर ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, अपने आप सेवा हो जाता है, अपने आप कार्य हो जाता है। और ये उत्साह ऐसा है, इट इज सो इन्फेक्शियस, संक्रामक है, कि जो भी आता है वो भी उसमें से लग जाता है, अपने आप वो भी भाषा समझ जाता है। और ये मैंने देखा है, हम लोग कुंभ मेला में गए थे 1996 में, महाकुंभ था 96 में आसपास, उस समय एक जर्मन 6.5 फुट का आदमी आया था, डिवोटी वैष्णव आया, और अपना जो बैग लाया था वो पंडाल में, हमारा हजारों लोग आ रहे थे, सबको प्रसाद बांटने का सेवा था, हम सब बांटते बांट, कई लोगों नाम देते थे, पर जब सेवा शुरू होता था तो दो दो मिनट में कम होते जाते थे लोग, और बाद में 7-8 लोग ही सर्विंग करते रहते थे, और बाद में एक पंगत उठ गया, दूसरा बैठा तो वो लोग भी गायब। उस समय ये व्यक्ति आया, डायरेक्टली आया, उसने जूता उता निकाला, बैग रखा, और देखा कि इतने लोग बैठे हुए, कम भक्त है, बकेट सब पड़ा हुआ है, लोग नहीं है, उसने सीधा बकेट उठाया और सर्विंग करना शुरू किया, डायरेक्टली दर्शन भी नहीं किया डीटीस का, आया वहीं से गेट के पास, वहीं बैठ के शुरू कर दिया, कर रहा था, करते 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 उसको कुछ भाषा नहीं आता, जर्मन के अलावा कुछ नहीं आता, और हमको जर्मन को छोड़ के और कुछ नहीं आता, मतलब जर्मन आता ही नहीं, तो हम देख रहे थे, वो आया और अपना सेवा कर रहा था, फिर उसको खत्म हो गया, बकेट खत्म हो गया, तो उसे नहीं मालूम कहां जाना है, फिर देखा दो लोग जा रहे हैं उनके पीछे पीछे गया, पता चला उधर किचन है, तो देखा वहां तो बड़ा बड़े चटाई के ऊपर राइस डाल रहे थे, और दाल बड़ा बड़ा डिक्ची में था, बस उतना राइस डाल, तो राइस उसने लिया, ट्रांसफर किया, सर्विंग किया, फिर दाल हो गया, और जो पूछ रहे थे देते जा रहा था। बाद में जो कुकिंग कर रहा था वो भी थक गया, वो भी चला गया, तो ये जाके वहां वो भी राइस भी बनाया, फिर नीचे डाला चटाई, फिर डाल के ला के सर्विंग कर रहा था, बाद में लोग कम हो रहे थे पर फिर भी कर रहा था। 3 दिन के अंदर वो किचन का इंचार्ज था, वो उसको एक भाषा जर्मन छोड़ के एक भाषा नहीं आती, एक ही भाषा हम एक दूसरे को बोल सकते, हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ये 2 शब्द के अलावा एक्चुअली कुछ नहीं मालूम था, पर पूरा किचन चला रहा था। 3 दिन के लिए हम लोग जो ठहरे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब हो रहा था ठीक ठाक, क्योंकि वो एक ही उद्देश्य से आया था कि हमें यहां कुछ करना है, सेवा करना है, हो रहा था अच्छी तरह से। और एक सुंदर बात जो इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलती है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु कुछ भक्तों को देखते थे कि बहुत अच्छे तरह से सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु उनका गुणगान करते थे और कहते थे बहुत अच्छे से कर रहे हो, और इसको भी सिखाओ, बगल वालों को भी सिखाओ कैसे करना चाहिए। और जब देखते थे कि कोई ठीक से नहीं कर रहा है तो महाप्रभु उसे डांटते थे, पर हृदय में घृणा नहीं थी, द्वेष भाव नहीं था, सुधारने के लिए ठीक करो बस, ऐसा नहीं करना। पर जब गुणगान करते थे भक्तों का तो दूसरे भक्तों को शर्म आती थी, शर्मिंदा आती, छी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी शर्म के मारे अच्छे तरह से सेवा करते थे। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सी महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि एक लीडर या आचार्य के रूप में भक्तों को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, टू ट्रेन द डिवोटीज हाउ टू सर्व एंड हाउ नॉट टू सर्व। पर हृदय में घृणा भाव नहीं होना चाहिए, द्वेष के भाव से नहीं, या किसी की निंदा करते हुए ऐसी भावना नहीं, बस सिर्फ सुधारने के लिए, ए ऐसा नहीं करते, ऐसा करो, और जो अच्छा कर रहा है उसको प्रोत्साहन देना, वेरी गुड, अच्छा किया आपने, ऐसे करो आप लोग भी, दूसरे लोग अफकोर्स जितना हो सके, किसी को डांटना है तो एक अकेले नहीं, सबके सामने नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रेज इन पब्लिक चैस्टाइज इन प्राइवेट। किसी को गुणगान करता है तो पब्लिक के सामने करो, और डांटना है तो अकेले ले जाके कोने में करो। पर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, आचार्य के रूप में जरूर अच्छी तरह से, क्योंकि सीखना किस तरह से सेवा करना है, कुछ वैष्णव आचार है, कुछ व्यवहार है। अंततः सबसे बड़ी सेवा क्या है, जिससे लोग कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़े। सेवा भाव जब हम करते हैं, जो भी देखता है, जो भी उसका रिसीविंग एंड, जो सेवा स्वीकार कर रहा है, उसको कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारी सेवा में कुछ कमी है। लड़ाई जीत गए पर युद्ध हार गए हम, अपने लड़ाई जीत लिया, टिक मार कर दिया, हो गया काम, पर अगर अंततः उस व्यक्ति को कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम नहीं हुआ या अप्रिसिएशन, इसका मतलब कहीं तो हम चूक गए सेवा में। किस तरह से हम बोलते हैं, किस तरह से हम कुछ करते हैं, सिंपल एक प्रसादम से सर्विंग करना, मुंह टेढ़ा करके थप करके, 3 फुट ऊपर से थप करके नीचे ऐसा डाला उसके प्लेट पे, आपने बोला सेवा किया ना, सबको खिलाया, देखो पूछो, भर भर के खिलाया, पर अगर वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्या किया, क्या खाने के लिए, तो इसमें ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, कैसा करना है कैसा नहीं करना है, और ये एक कर्तव्य है एक आदर्श लीडर का। महाप्रभु इस तरह से यहां दिखा रहे हैं, जो अच्छे से कर रहे थे उनको गुणगान कर रहे थे, दूसरों को सिखा रहे थे ऐसा मत करो ऐसा करो। इस तरह जब सेवा करते करते कुछ लोग महाप्रभु को बर्तन में बड़े बड़े हंडी ला के पानी डाल रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, पीछे से महाप्रभु के चरण कमलों में पानी डाल दिया, और उसमें से नीचे से कुछ लोगों ने पानी लेके इधर बाहर आ गए और सबको दान देने लगे, चैरिटी, सबसे बड़ा चैरिटी दान। पर उनमें से एक बड़ा विद्वान, पर बड़ा सरल स्वभाव वाला एक भक्त, बंगाली भक्त गौड़िया, उसने क्या किया, डायरेक्ट महाप्रभु के सामने उनके चरणों के ऊपर पानी डाला और लेके पूरा पी लिया उसने, मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में। तो महाप्रभु बाहर रूप से बहुत ही क्रोधित हो गए, संतुष्ट नहीं हुए, बहुत क्रोधित हो गए, और तुरंत स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाया और कहने लगे, ये तुम्हारा गौड़िया बंगाली वैष्णव, इसको पकड़ो और यहां से निकालो, ये मेरे को नरक में भेजेगा, आज इसने भगवान के मंदिर में मेरे चरण धो दिए और उसको पी रहा है अकेले सीधा मुंह पे, मेरे अधोगति कराने वाला ये। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए, उसको गले से पकड़ा, सीधा धक्का मार के गुंडीचा मंदिर से बाहर कर दिया, बोले बाहर ही खड़े रहना बस, अंदर नहीं आना तू, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद आधे पन्ने में लिखते हैं, जब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहा, ये तुम्हारा बंगाली वैष्णव, ये तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उसके बाद षड गोस्वामी, उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, परंपरा से जुड़ गए वो। महत्व परंपरा का महत्व बहुत सुंदर से बताया हुआ है। परंपरा से जुड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। दासानुदास ये हुए बिना हम इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम प्रसन्न नहीं कर सकते महाप्रभु को। ये परंपरा का महत्व जो है बहुत सुंदर से महाप्रभु ने, और एक भी और एक चीज सीखना है कि भगवान के सामने पूजा स्वीकार करना या किसी का पैर धुलवाना, ये शास्त्र के रूप से भी एक सही वैष्णव आचार नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस प्रसंग के द्वारा महाप्रभु ने दिखाया, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अपने हृदय को किस तरह से शुद्ध किया जाए। महाप्रभु का एक था चेतो दर्पण मार्जन, तो ये झाड़ू हरिनाम संकीर्तन का भी झाड़ू हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए। जब तक हम हमारे हृदय के गुंडीचा को स्वच्छ नहीं करे रखेंगे, तब तक जगन्नाथ जी कैसे आके वहां निवास करेंगे। रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, पर उसका मतलब हम जगन्नाथ जी को आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, पर क्या गुंडीचा मार्जन किए हमने। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो ये कैसा होगा। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति। धुनोति मतलब धुल जाना, विधुनोति मतलब पूर्ण रूप से धुल जाना। कब? श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण का श्रवण और कीर्तन। नवदा भक्ति जो है उसमें ये दो जो है श्रवणम कीर्तनम बहुत ही शक्तिशाली है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। तब हम श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को हम अपने हृदय में आमंत्रित कर स्थान दे सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु आप हमेशा निवास कीजिए। तो ये हर साल जो सुंदर उत्सव आता है, हम जाएंगे, हम जाते हैं उस दिनों जगन्नाथपुरी जाना, कई बार गए हैं सौभाग्यवश। इस समय रथ यात्रा के समय हम गए थे, पिछले दिन गुंडीचा मार्जन किए, अगले दिन रथ यात्रा में खींचे, रथ खींचे, सौभाग्य है, अच्छी बात है। पर साथ साथ में ये भी सोचना कि वो न केवल एक रिवाज न बनकर, उसका असली महत्व समझकर, न केवल साल में एक बार बल्कि हर एक दिन, ये हमारा इट्स ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। हृदय को साफ करना, गुंडीचा मार्जन एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि ये हमारा हृदय का जो मंदिर है, अभी समझ में नहीं आता है क्या मंदिर है कि वो मंदिर था कभी, तो साफ करना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे जो उत्सव आते हैं उनमें, और ये शास्त्रों के द्वारा सुनकर जब हम श्रवण करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, हर रोज हर परिस्थिति में हर क्षण, तब ये सुंदर जो उत्सव हैं इनका हम सही तरह से लाभ ले सकते हैं। आने वाले इस हफ्ते में चार और वैष्णव तिथि है, गदाधर पंडित का तिरुभाव, भक्ति विनोद ठाकुर का वक्रेश्वर पंडित, ऐसे चार लोगों का ये हफ्ता जो है बहुत ही, बहुत सारे पुण्य तिथि बहुत सारे मंगलमय दिन आ रहे हैं, तो कृपया इन लीलाओं का स्मरण कीजिए, हो सके तो जहां भी रथयात्रा हम लोग कर रहे हैं, हरि बोल, रथ यात्रा के दिन यहां हम लोग रथ यात्रा करेंगे, तो जरूर आइएगा और भाग लीजिएगा। इस रथ यात्रा में गुंडीचा मार्जन है नहीं, क्योंकि यहीं से आएंगे यहीं वापस आ जाएं। निकलने से पहले जगन्नाथ मंदिर है और आने के बाद यही गुंडीचा है, तो ये मंदिर मार्जन हो जाएगा तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा, तो जरूर कृपया भाग लीजिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।